ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने कि जिसमें बाबा ने विशेष संकल्प शक्ति का महत्व बताया और बहुत गुह्य बातें हमारे सामने स्पष्ट भी किया। बाबा ने कहा कि दुनिया की आत्माएं घबराती है, घबराहट में है और तुम अंदर में निर्भय हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खजाने बाबा ने ऐसे दिए हुए हैं कि जिन प्रैक्टिकल खजानों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कई बातें स्वतः हमारी घबराहट को समाप्त कर देती है, निर्भय बना देती है। आज दुनिया के अंदर चारों ओर हलचल मची है, लेकिन उस हलचल में भी बाबा के बच्चों को जब देखते हैं तो अचल है। बहुत सुंदर एक चीज का अनुभव किया हमने कि जब ये भारत भर में धन की बात को लेकर के हलचल होती रही चारों ओर, लेकिन ब्राह्मण बच्चे जो क्लास में आते थे सब मुस्कुराते थे, सब खुश हो रहे थे। तो इससे ऐसा महसूस होता था कि देखो, बाबा ने पहले से ही ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म करने की जो प्रेरणा दी हुई है, उस प्रेरणा के कारण ही सब बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दुनिया इतनी हलचल में है, लेकिन ब्राह्मण जब क्लास में आते हैं तो हर एक का चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, क्योंकि बाबा की भविष्यवाणियां साकार होते हुए जब देखते हैं तो इतना निश्चिंत कर देते हैं हर एक को कि बाबा ने पहले ही सुनाया है कि किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, सफली उनकी होगी जिसका क्या, जो धनी के नाम करे। तो इसीलिए हम सभी बच्चों की अवस्था, क्योंकि हमने जिस तरह से बाबा के यज्ञ के अंदर धन को सफल किया है उस धनी के नाम से, तो नेचुरल है कि पहले से ही बाबा ने हमें हर बात से सुरक्षित कर लिया। तो ये कितनी सुंदर बात है कि बाबा ने पहले से ही बच्चों को एक विधि ऐसी बना दी यज्ञ के अंदर चलने की कि जिस विधि से पहले से ही सुरक्षित हो गए। बाकी सारी दुनिया हलचल में रही, भारत तो क्या, लेकिन विदेशों में भी कहीं हलचल में दिखाई दिए, क्योंकि कई लोग यहां से बचे हुए भी वहां तक ले जाते हैं कि जब आएंगे तब काम आएगा करके, तो नेचुरल है कि वो सफल नहीं कर पाए। मैं आज सुबह ही हांगकांग से आई, वहां कुछ भाई बहने के पास 500,000 की नोट होंगी, कहा आप ले जाएंगे? हंसी भी आई। और उस समय यही हुआ कि बाबा ने कहा था कि एक समय लोग देना चाहेंगे और हम कहेंगे नहीं चाहिए, है ना। तो सब भंडारियों के ऊपर जब लिख दिया गया कि कोई 500,000 की लोट नहीं डाले, आज लोग देना चाहते हैं और बाबा कहते नहीं चाहिए, है ना। तो ये समय आ चुका है ड्रामा के अंदर कि सोचते हैं कि कागज हो जाए उसके पहले, कुछ तो हमारा जमा का खाता हो जाए। लेकिन जिसने पहले जमा कर लिया उसने कर लिया, बाकी कोई करना चाहे तो भी नहीं हो सकेगा। तो बाबा के एक एक महावाक्य कितने सत्य सिद्ध होते जा रहे हैं और हर बात को इतना अच्छी तरह से हम बच्चे समझ पाते हैं। जब मैं सोच रही थी कि सचमुच कहां कहां से पेपर आएंगे, तो यही आया कि देखो बाबा ने पहले ही कहा था कि चारों ओर से। लेकिन चार ओर कौन से हैं? तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हो ही जाते हैं चार दिशा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे आठ दिशा हो गई। और ऊपर से और नीचे से ये भी तो दिशाएं हैं, तो दसों ओर से पेपर आएंगे। तो दस ओर कौन से हैं? तो पहला चार ओर जो दिखाया कि तन से पेपर आएंगे, शारीरिक पेपर आएंगे, है ना, कम बीमारियों के रूप से या कमजोरी के रूप से मन का पेपर आएगा, जिसके बारे में आज बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है कि व्यर्थ संकल्प क्यों नहीं चलाना है, व्यर्थ में कितना लीकेज होता है, कि बाबा ने बहुत स्पष्ट आज की मुरली के अंदर किया। तो तन मन धन और जन ये चार पेपर है सतयुग के अंदर। अगर ये चारों ही बहुत सुखदायी सुख देने वाले बन जाएंगे, लेकिन कलयुग में ये चारों ही पेपर लेने वाले हो जाएंगे। तो तन मन धन और जन ये चारों ही पेपर का स्वरूप बनता जा रहा है। ये प्रैक्टिकल हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि तन में भी इतनी बीमारियां आ रही है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी नाम नहीं सुने, ऐसी बीमारियां भी निकलती जा रही है कि साइंस कितने भी नई इन्वेंशन कर ले कि भाई बीमारियों का पता पहले से लगा सके, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लगा पा रहे हैं। और जब ऐसी बीमारी सामने आती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि करोड़ों में या लाखों में एक को ऐसी बीमारी होती है, ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसी नई नई बीमारियों का स्वरूप हम देखते जा रहे हैं। दूसरा जो कहा मन, मन इतना चंचल है आज दुनिया के अंदर कि मनुष्य कई प्रकार के कमजोर मन के शिकार बनते जा रहे हैं, और वही कमजोर मन कैसे परीक्षा लेने के निमित्त बन जाता है, खुद के ही व्यर्थ संकल्प, खुद के ही विचार कैसे अनेक प्रकार से डिप्रेशन के शिकार को हो या स्ट्रेस का रूप लेता जा रहा है, जो आज पेपर का रूप हो गया है कि मनुष्य को जितने बोझ का अनुभव करा सकता है मन के बोझ का, वो बोझ हम हरेक के जीवन के अंदर उसका शिकार होते हुए देख रहे हैं। इसलिए कहा, चाहे तनाव के रूप में, चाहे अवसाद के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, वो मन कैसे पेपर लेने के निमित्त बनता जा रहा है और उसमें बाहर, उसमें से बाहर निकलने के लिए कितने भी रास्ते मनुष्य ढूंढ ले, लेकिन वो ऐसी हलचल अंदर क्रिएट कर रहा है कि उस मन को स्थिर करना, चल करना उनके लिए बहुत कठिन महसूस होता जा रहा है। जो बाबा ने आज मुरली में कहा कि लाइटनेस, जैसे साइंस के साधन सारे लाइट पर चलते हैं, तो हमारी आंतरिक स्थिति भी जितनी लाइट रहेगी उतना ये पेपर को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। धन भी एक बहुत बड़ा पेपर लेने के लिए निमित्त बनेगा। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप तो हमने देखा, लेकिन आगे भी यही धन कैसे पेपर का रूप लेता जाएगा और कितने और पेपर उससे कनेक्टेड लोगों के जीवन के लिए मुश्किल कर देगा, इसका भी प्रैक्टिकल स्वरूप महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि बच्चे, सिंपल रहना है, सैंपल बनना है, ना ऊंचा ना नीचा, ऐसी हमारी एक जीवन शैली हो। और चौथा जन, वो तो हर एक महसूस कर ही रहे हैं कि परिवार के अंदर, चाहे समाज के अंदर, चाहे हर रीति से जन किस तरह से परेशानी का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि हर आत्मा कमजोर हो रही है। और जब हर आत्मा कमजोर है तो हर आत्मा कितने परेशान होने के कारण कितनी हलचल में आ सकती है और कितनों को हलचल में ला सकती है, ये भी हमने अनुभव किया हुआ है। इसलिए कहा कि चार पेपर तो ये हो गए, तन मन धन और जन। दूसरे चार पेपर कौन से हैं? तो समस्याएं, परिस्थिति, साधन सुविधाएं और प्रकृति, ये दूसरे चार हैं। जो भी पेपर लेने के निमित्त बनेंगी, हलचल क्रिएट करने के निमित्त बनेंगी। समस्याएं चाहे बाहर से आ रही हो या अपने ही संस्कार के वश जब हो जाते हैं तो समस्याएं अनेक प्रकार की खड़ी कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य के संस्कार ही, कई बार संस्कार कहो, पुरानी आदतें कहो, ये उनके लिए समस्या का स्वरूप बनती जाती है। तो किसको दोष देंगे? जो समस्याएं भीतर से आ रही है, भीतर से निर्मित हो रही है, उसको कौन ठीक कर सकता है? जब तक व्यक्ति खुद रियलाइज करते हुए उसको ठीक न करे, तब तक तो कोई नहीं ठीक कर सकता है। चाहे परिस्थितियां जो बाहर से आती है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन को प्रभावित करती जा रही है, तो वो परिस्थितियों का भी तो सामना तो करना पड़ेगा। और जब उसका सामना नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से शिकार बनते जाएंगे, ऐसी हलचल में, ऐसे एक तूफान के अंदर व्यक्ति घिर जाएगा। तीसरा, जो साधन सुविधा आज सुख देने का आधार है, लेकिन जैसे आज बाबा ने कहा, सारे साधन सुविधाएं लाइट पर चलने वाली है और वो लाइट फेलियर ही हो जाएंगे, तो वो साधन होते हुए, सुविधाएं होते हुए भी क्या काम की? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उन साधन सुविधाओं के अधीन हो चुके हैं, जिसके अधीनता को स्वीकार कर लिया है कि उसके बिना चलता ही नहीं है, है ना, आज एक मोबाइल है, मोबाइल के बिना कोई काम नहीं होता है। तो उस समय जिसने अधीनता को स्वीकार किया हुआ है, तो उस अधीनता के कारण कैसी मनस्थिति होगी, कितनी हलचल महसूस करेंगे कि उस समय अगर योग लगाना चाहे तो भी लग नहीं पाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने भीतर का वायरलेस सिस्टम जो है पावरफुल बनाओ। साइलेंस की शक्ति, मन का मौन, उस समय कैसे हमें टचिंग और कैचिंग पावर को पावरफुल बनाने के लिए निमित्त बनेगी। तो इसीलिए ये सुख सुविधा के साधन भी कैसे दुख का कारण बन जाएगा, हलचल का कारण बन जाएगा। और चौथा प्रकृति, प्रकृति जिस तरह से आज चारों ओर विश्व के अंदर कोई न कोई ऐसे प्रकोप क्रिएट करती है, तो किस तरह से मनुष्य को परेशान करती है। तो ये आठ दिशा तो हो गई, नौवीं दिशा और दसवीं दिशा एक ऊपर से आएंगे। ऊपर से यानी के बम गिरेंगे, जो बम बनाए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, उसका प्रयोग भी अवश्य होना ही है। तो ये ऊपर से आएंगे और नीचे से आतंकवाद, कि जिस तरह से आतंकवाद जितना दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका भी शिकार मनुष्य बनते जाएंगे। तो ये है दसों दिशाओं से पेपर आना, दसों दिशाएं। और एक साथ में अगर ये सारे पेपर आए तो हालत क्या होगी, कितनी शक्ति चाहिए, अचल रहने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। तो उसमें जो बाबा ने आज की मुरली में अचल रहने के लिए शक्ति बताई कि संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उस संकल्प शक्ति को महसूस करने के लिए या उसका प्रयोग करने के लिए व्यर्थ को समाप्त करना होगा, क्योंकि तभी वो संकल्प शक्ति हमारे काम आ सकती है। बाबा ने जिस तरह से बच्चों को देखा तो बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी के अंदर अभी भी व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं। और इसीलिए शायद बाबा हमें सावधान करना चाहते हैं कि आपके पास ये सबसे पावरफुल शक्ति है अचल रहने के लिए, ऐसे हलचल में भी उसका सदुपयोग करके, उसका प्रयोग करते हुए, उसके माध्यम से जो सुख ले सकते हैं या उस समय को पार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संकल्प शक्ति को सही दिशा में लगाना, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प को बंद करना, क्योंकि उससे काफी लीकेज हो जाती है। तो वो जमा जो होनी चाहिए संकल्प शक्ति, वो जमा नहीं हो सकती है। जो पेपर आएंगे उसमें संकल्प शक्ति कहाँ कहाँ मदद कर सकती है, तो संकल्प शक्ति जो है मन के जो पेपर है उसको सुलझाने के लिए मदद कर सकती है। जन जिस तरह से पेपर का स्वरूप लेंगे या हमारे साथ अनेक प्रकार के संस्कारों के टक्कर में आएंगे, तो उस समय शुभ भावना, शुभ कामना के आधार से उनकी मनस्थिति को भी शांति देना या मनसा शक्ति के माध्यम से उनको शांति देना, ताकि वो हमारे लिए पेपर न बन जाए, पेपर लेने के निमित्त न बन जाए। तो इसीलिए उनके मनसा को शांत करने के लिए शुभ भावना का दान। वो आत्माएं बहुत कमजोर है, इसीलिए पेपर लेने के निमित्त बनेंगी, लेकिन ऐसे समय पर हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति उनके अंदर भी शीतलता को प्रवाहित करेगी और उनको शांत करेगी, ताकि वो पेपर लेने के निमित्त न बने या उस हलचल में कम से कम वो भी शांत हो जाए। ये हमारा कर्तव्य होगा। तो इसीलिए संकल्प शक्ति मनोबल को विकसित करती है, यानी मन कमजोर न हो जाए, क्योंकि मन कमजोर होगा तो कमजोर मन डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार होने कारण कैसा पेपर लेने के निमित्त बनेगी। तो बाबा कहते संकल्प शक्ति मनोबल को विकसित करती है, और मनोबल जितना विकसित होगा तो उस पेपर के समय अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। जन्म के पेपर को शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक हम अपने अंदर रख करके उसको हम देंगे ताकि वो भी शांत हो जाए, वो हमारा पेपर लेने के लिए ये हलचल क्रिएट करने के लिए निमित्त न बने। और तीसरा, यही संकल्प की शक्ति अनेक प्रकार की परिस्थिति और समस्या के समय भी पहले से ही टचिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर मन बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर है संकल्प शक्ति के आधार पर, तो पहले से ही टचिंग हो जाएगी, ये पेपर आएगा तो पहले से ही हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो संकल्प शक्ति कितने पेपरों के लिए हमें काम में आ सकती है, इसलिए आज बाबा ने संकल्प शक्ति का महत्व बताया कि पहले से ही टचिंग अगर हो जाएगा, आप पहले से ही कैच कर पाएंगे, तो उस समय वो परिस्थितियां वो समस्याएं जो पेपर लेने के लिए आएंगे लेकिन टचिंग हो गई तो आप पहले से ही उसका बंदोबस्त कर लेंगे, तो आप उसके शिकार नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ चौथा, प्रकृति को भी शांत कर सकेंगे, प्रकृति को भी शुद्ध कर पाएंगे। तो कई पेपरों के लिए ये संकल्प शक्ति ही काफी है। इसलिए बाबा कहते संकल्प शुद्ध संकल्प शक्ति का स्टॉक, जो बाबा ने कहा श्रेष्ठ शुद्ध स्वच्छ और पावरफुल, जब संकल्प इस तरीके से होंगे तो हर पेपर को पार करने के लिए ये संकल्प शक्ति काफी है। इसलिए बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधनों से का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट मिलता है, इसी तरह संकल्प शक्ति का भी जब प्रयोग करते जाएंगे तो उसका रिजल्ट महसूस होगा, और आप महसूस करेंगे कि कितना हम अचल, इस आधार पर, इस एक शक्ति के आधार पर भी कितना अचल रहने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। मनोबल को विकसित करेगा, शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक हमारे अंदर जमा कर पाएगा, और साथ ही साथ मनसा सेवा के माध्यम से प्रकृति को परिस्थिति को पहले से ही कैच करके वो टचिंग्स बाबा की प्राप्त करके उनको पहले से ही आप निपटा सकेंगे। इतना काम आती है संकल्प शक्ति, इसीलिए संकल्प शक्ति को अभी से अटेंशन के पहरेदार को हम मजबूत कर दें, और व्यर्थ संकल्प में उस एनर्जी को वेस्ट न होने दे, क्योंकि तभी संकल्प शक्ति के आधार से हम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर विकसित कर सकेंगे, और ये पॉजिटिव ऊर्जा हमें समय पर काम आएगी। कि कैसे भी नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, इतना नकारात्मक वायुमंडल बन जाएगा अंतिम समय में, तो उस नकारात्मक वायुमंडल में अपने आप को चलाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा की बहुत आवश्यकता महसूस होगी, और वही सरवाइव कर पाएगा या उन पेपरों को पास कर पाएगा जिनके पास सकारात्मक ऊर्जा का स्टॉक बहुत जबरदस्त अंदर में जमा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करो अंदर में। तो हलचल में अचल रहने के लिए दूसरी जो चीज आवश्यक है वो है सकारात्मक ऊर्जा का स्टॉक, बहुत पावरफुल रूप से चाहिए। तीसरे, जो हलचल में अचल रहने के लिए बहुत पावरफुल चीज जो बाबा हमें रोज दे रहा है वो है ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो संकल्पों का खजाना, सकारात्मक ऊर्जा का खजाना, और तीसरा है ज्ञान का खजाना। ज्ञान माना समझ, समझ को सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से अप्लाई करना। कहां आत्म अभिमानी स्थिति काम करती है, कहां ड्रामा का ज्ञान हमें उपयोगी बनता है, कहां कर्म फिलॉसफी को समझने से हम कई चीज को कर सकते हैं, तो सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट का राइट एप्लीकेशन जिसको कहा जाए बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि जहां आत्मिक स्थिति को विकसित करना हो वहां पर हम ड्रामा का ज्ञान अप्लाई करके निश्चिंत होने लगे, नहीं, धोखा खा लेंगे। तो सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट का इस्तेमाल करने से हम सफल हो जाएंगे, अचल रह पाएंगे। नहीं तो हर समय धोखा, माना ज्ञान का खजाना होने के बावजूद भी उसका एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो धोखा तो खाएंगे। इसलिए बाबा कई बार कहते कि बच्चे साक्षी भाव को विकसित करते हुए ड्रामा के पटरी पर, तीनों कालों की पटरी पर, आदि मध्य और अंत को सोचते हुए, समझते हुए फिर कौन सी बात को अप्लाई करना है उसको सही रूप में समझो और समझ करके उसका प्रयोग करो। तो ज्ञान का खजाना इतने सालों से बाबा ने हम बच्चों को दिया है, लेकिन कौन से समय पर कौन सी ज्ञान की पॉइंट हमें मदद करेगी उसका भी तो अनुभव करना है कि कहां पर कौन से ज्ञान की बातों को व्यावहारिक स्तर पर हमें ले आना है, उसका प्रयोग करना है। समस्या के समय पर समाधान करने के लिए कौन सी ज्ञान की पॉइंट चाहिए, जन का जो पेपर आएगा तो उस समय कौन सी ज्ञान की पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं हर जगह हम ड्रामा के ज्ञान का, किसी का पैर टूटा है और उसको कहे ड्रामा कल्याणकारी है, बहुत गुस्सा आएगा उस वक्त, उसको कहेंगे ये क्या ज्ञान सुना रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान सही समय पर सही बात, कि जहां सहानुभूति चाहिए तो बाबा कहते हैं वहां हम उसको आत्मिक दृष्टि दे करके, सकाश देते हुए उसको सहन करने की शक्ति दे, जो पेन और तकलीफ से गुजर रहा है उसको शांति का दान दे। हम वहां ड्रामा का ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं चलता है कि ड्रामा का ज्ञान कल्याणकारी है, चलो टांग टूटती, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, उसमें ड्रामा है, नहीं कह सकते हम। वहां उस आत्मा को शांति की सकाश चाहिए, शक्ति चाहिए सहन करने की। तो इसीलिए उस समय बाबा जो कहते हैं साक्षी होकर के उस आत्मा को हम शक्ति दे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और इस तरह से ज्ञान हमको हर तरीके से मदद भी करता है और ज्ञान हमें अचल रहने के लिए मजबूती देता है। नॉलेज इज पावर। जब नॉलेज इज पावर कहा, ज्ञान एक शक्ति है, तो हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा को विकसित करता है जो हर समझ को सही समय पर काम करते हुए उसे सुख दे सकते हैं और खुद भी उसका अनुभव कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ज्ञान का खजाना तीसरा। चौथा है, चौथा जो पावर है, अष्ट शक्तियों का खजाना। बाबा ने हम बच्चों को अष्ट शक्ति प्रदान की है कि योग के द्वारा तुम अपने अंदर अष्ट शक्तियों को विकसित करो, ताकि जो पेपर आए उस समय जहां सहन करने का है वहां सहन शक्ति को यूज करो, जहां सामना करना है वहां सामना करने की शक्ति को यूज करो, जहां परखने की शक्ति को लगाना है वह परख शक्ति को कार्य में लगा सके, जहां निर्णय लेना है, फैसला लेना है, वहां उस शक्ति का प्रयोग करें। ऐसा नहीं टाइम बीत जाए और उसके बाद हमें होश आए कि अरे ये निर्णय लिया होता था तो सही होता था, अब क्या करें। वो तो और भी हलचल में लाने वाली बात है। तो इसीलिए अष्ट शक्तियों का खजाना जो योग के द्वारा हम अपने अंदर जमा करते हैं, तो सही समय पर सही शक्ति का इस्तेमाल करना, क्योंकि वही हमें अंदर से मजबूती भी देगा, अचल रहने की हिम्मत प्रदान करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अष्ट रत्न का आधार क्या है। अष्ट रत्न का आधार है कि ये आठों शक्ति का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करना, ये अष्ट रत्न बना देता है। इसलिए अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक हमारे पास जमा हो, और वो कैसे होगा? योग के माध्यम से। तो जैसे ज्ञान एक शक्ति है, योग भी शक्ति है, तो योग हमारे अंदर अष्ट शक्तियों को विकसित करने के लिए बहुत पावरफुल एक साधन है। तो अष्ट शक्तियां, क्योंकि जो हमें निर्भय बना देंगी अंदर से, कोई ऐसी परिस्थिति आए, कोई ऐसी प्राकृतिक स्थिति आए, तो उस समय कौन सी शक्ति का प्रयोग करेंगे? ऐसे समय पर अगर सहन करके बैठेंगे तो और भी तकलीफ महसूस करेंगे, लेकिन उस समय सामना करके उसको पार करना है। तो जब सामना करके उसको पार करेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे, तो वो उस समय हमें ऐसे निर्भय बनाते हुए पार करने के लिए सक्षम बना देंगे। इसीलिए ये अष्ट शक्तियां हमें भीतर से निर्भय बना देती है कि कोई भी पेपर आए उसमें हम हर रीति से तैयार है। ये अष्ट शक्तियां अष्ट शस्त्र के रूप में, अष्ट भुजाओं के रूप में मेरे साथी बन करके उस समय मुझे कार्य करने में मदद करेगा। तो इसलिए ये अष्ट शक्तियां, उसमें अष्ट शक्तियों के साथ साथ और शक्तियां भी शामिल हो जाती है, जैसे सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति भी बहुत पावरफुल शक्ति है। साइलेंस की शक्ति, ये भी बहुत पावरफुल। बाबा ने पहली मुरली में जब कहा मन का मौन, वो मन का मौन इसीलिए कहा था कि अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां आती है, ऐसे समय पर ये मन का मौन ही हमारे अंदर सारी शक्तियों को विकसित करने के लिए बल प्रदान करता है, और तब हम खुशी के डांस, मन का डांस कर सकते हैं खुशी में रहते हुए। तो इसीलिए ये मन का डांस करने के लिए, सदा खुश रहने के लिए, हलचल में भी सदा खुश हमारी मनस्थिति रहे, उसके लिए ये अष्ट शक्तियों के साथ साथ और शक्तियां भी हमें विकसित करना है, क्योंकि वही हम अंदर से हमें बल प्रदान करता है। आज जो व्यक्ति दुनिया के अंदर भी झूठ का सहारा लेता है, आज जैसे बाबा ने कहा सारे आधार निकलते जाएंगे। जो मनुष्य झूठ का आधार लेता है, झूठ के माध्यम से कई तरह आगे बढ़ भी गया जीवन के अंदर, लेकिन जिस समय ये आधार निकल जाएंगे उस समय कहाँ रहेगा? नीचे गिरेगा, एकदम टूट जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से सत्य बाप के हम बच्चे हैं, तो सत्य बाप के बच्चे होने कारण हमारे अंदर वो सत्यता की शक्ति बहुत पावरफुल रूप में चाहिए, क्योंकि वही हमें निर्भय बना देंगे, और ऐसा निर्भय बनाएंगे कि कोई भी बात हमें हलचल में नहीं ला सकेंगे। झूठ ही तो इंसान को डराता है, झूठ ही तो इंसान को कमजोर करता है, लेकिन जहां सत्यता का बल है, सत्य ज्ञान का आधार है, तो वो हमें ऐसी शक्ति देगा जो हमें आगे चलने के लिए काफी है, अचल रहने के लिए काफी हो जाएगा, और उस समय हम सत्य बाप की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन जाएंगे कि ये व्यक्ति किस आधार पर चल रहा है, इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है, उसके पास सत्यता की शक्ति है। सत्यता की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति। ऐसे जितनी भी कमजोरियां हैं दुनिया के अंदर, जो आज मनुष्य ने अपने जीवन में चलने का आधार बना लिया है, लेकिन बाबा ने हमें आधार दिया है वैल्यूज का। इसलिए वैल्यूज को लेकर के चलेंगे तो वो वैल्यूज हमें अंदर से ऐसे सशक्त बना देंगे कि वो वैल्यूज के आधार पर चलना आगे हलचल में अचल रहने के लिए बहुत पावरफुल आधार है। तो अष्ट शक्तियों के साथ साथ वैल्यूज, पांचवी बात, वैल्यूज हमें बहुत अंदर से सशक्त कर देगा, एम्पावर्ड फील कराएगा। और जब व्यक्ति एम्पावर्ड है, इसीलिए बाबा ने कहा कि एक है सद्गुण, जो दिव्य गुण है, देवताओं के अंदर दिव्य गुण भी है तो शक्तियां भी है। तो ये आधार अभी से हमें मजबूत करने होंगे अपने। ये जितने सूक्ष्म आधारों को हमने मजबूत किया, ये हमें अंदर से बल देगा अचल रहने के लिए। नहीं तो हलचल में इंसान टूटना ये स्वाभाविक है। साथ ही साथ जो बाबा कई बार हम बच्चों को दो बातें स्पष्ट करता है कि एक है भाग्य, दूसरा है पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य जमा करने का आधार क्या है, भाग्य प्राप्त करने का आधार क्या है? सतयुग में जो हम भाग्य प्राप्त करते हैं उसका आधार क्या है? उसका आधार है ज्ञान दान कहो, सेवा कहो, जिस भी तरीके से हम व्यवहारिक रूप में जो बातें प्रयोग करते हैं, चाहे ज्ञान दान करते हुए एक दूसरे को ज्ञान की बात, दो बाप का परिचय देते हैं, या स्थूल दान करते हैं, या जिस भी तरीके से हम सेवा करते, तन मन धन समय श्वास शक्ति, जिस भी तरीके से सेवा किया, ये हमें भाग्य प्रदान करने के लिए निमित्त बनेंगे। लेकिन ये पद को प्राप्त नहीं कराएगा। पद को प्राप्त करने का आधार क्या है? पद को प्राप्त करने का आधार है पढ़ाई। इसीलिए बाबा पढ़ाई पर भी इतना जोर देता है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ेंगे दुनिया में भी, जैसे एक व्यक्ति पढ़ाई पढ़ता है तो पद को प्राप्त करता है। आज कोई डोनेशन देता है, जो भी करता है, उससे पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। उससे बाबा ने जैसे कहा कि कोई जैसे हॉस्पिटल खोल देता, दूसरे जन्म में उसको हेल्थ अच्छी मिलेगी, लेकिन बुद्धि अच्छी मिलेगी ऐसा नहीं कहा बाबा ने। हेल्थ अच्छी, भाग्य अच्छा मिलेगा उसको, क्योंकि उसने तन मन धन जिस भी तरीके से सेवा किया, उस सेवा का रिटर्न उसको भाग्य अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन पद का आधार पढ़ाई है, पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से पद को फाइनल करते हैं। लेकिन जो भविष्य के अंदर जो सेवा किया है, उसके आधार से भाग्य प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों चीज हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत पावरफुल रीति से होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते, अंत तक सेवा को भी नहीं छोड़ना है, सेवा भी करते ही रहना है, चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो, संबंधों से करो, जिस भी तरीके से सेवा करो, क्योंकि उसी से हम भाग्य को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। लेकिन ये पद को फाइनल नहीं करेगा। ये बात याद रखे, कई लोग ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं ना, हमारा पद अच्छा ही होगा। नहीं, सेवा करने से पद फाइनल नहीं होता है, पद फाइनल होता है पढ़ाई से। जितना पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई और सेवा दोनों को समान रूप से चलाते हैं, तो उसी से ही पद भी फाइनल करते हैं और भाग्य भी। तभी राजाई पद को प्राप्त कर सकते हैं कि जहां भाग्य भी हो और पद भी हो, तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो खाली सेवा किया लेकिन पढ़ाई नहीं किया, तो भाग्य मिलेगा कहाँ? इसीलिए बाबा कहते राम फेल हो गया, यानी सतयुग के पद के लिए वो फेल हो गया, तो त्रेता में पद को पाया, त्रेता में। लेकिन फेल तो कहा जाएगा, फेल ही कहेंगे ना, पद वो नहीं मिला, सतयुग के अष्ट गद्दियों का पद नहीं प्राप्त हुआ, फेल हो गया। और इसी तरह से 12 जो श्री राम सीता चलेंगे इनकी गद्दियां, वो भी फेल माने जाएंगे, वो पद नहीं है। इसीलिए पद का आधार पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बाबा हमेशा ये कहते हैं, पढ़े लिखो के आगे अनपढ़ भी भरी ढोएंगे। तो पढ़ाई का महत्व और सेवा का महत्व, सेवा भाग्य प्रदान कर सकता है, पद नहीं। पद प्राप्त करना है तो पढ़ाई ही चाहिए, और पढ़ाई खाली है सेवा नहीं है। खाली पढ़ाई करते रहे, सेवा नहीं किया, हम पढ़ रहे हैं ना, सेवा नहीं किया तो भी भाग्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरी है, तभी पद और भाग्य दोनों ही प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो एक भी कम हो जाएगा तो पीछे नंबर आएगा, या द्वापर में जैसे कहा, भाग्य अच्छा प्राप्त कर लेंगे, पद नहीं मिलेगा उसको, सतयुग त्रेता में पद नहीं। अब भाग्य अच्छा ही कहेंगे, आज अगर श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाले जो दास दासियां हैं, भाग्य तो अच्छा है ना, भाग्य तो अच्छा है ना, श्री कृष्ण के साथ महलों में होंगे, उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन पद तो नहीं है, पद तो नहीं है ना, भाग्य अच्छा है। तो श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाले जो दास दासियां हैं, उन्हें श्री कृष्ण को देखने का भाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि सेवा अच्छी किया था, लेकिन पढ़ाई नहीं था, इसीलिए पद नहीं मिला, दास दासियां बन गए। ये है एक सीक्रेट कि पढ़ाई के ऊपर जो बाबा इतना जोर देता है कि मुरली कभी मिस न करो, पढ़ाई रोज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। और साथ में जो बाबा सेवा के लिए भी जोर देता है, वो सेवा क्यों करनी है, क्योंकि ये दोनों का बैलेंस ही हमें सतयुग के उस राज्य भाग्य को, राज्य को भी और भाग्य को भी, दोनों को प्राप्त कराएगा। नहीं तो भाग्य मिलेगा पद नहीं, दास दासियां बनने का भाग्य, श्री कृष्ण के साथ महलों में होंगे, ये भाग्य अच्छा है, लेकिन पद तो नहीं है ना। तो फाइनल हमें करना है कि हमें क्या चाहिए अपने जीवन के अंदर। जब इतना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी इतना ही पढ़ो, जितना पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, जीवन के अंदर धारणा होती जाती है और सेवा करते जाते हैं, तो फिर दोनों जहां मिल जाते हैं, तो जैसे कहा जाता, सोने में सुगंध। तो इस तरह हमारा जीवन हो, नहीं तो जैसे सोचेंगे कि भाई हमने तो इतनी सेवा किया था, फिर हमें ये दास दासी का पद क्यों मिला। सेवा किया तो भाग्य मिल गया, पढ़ाई नहीं था इसलिए पद नहीं मिला। तो इसीलिए ये गुह्य राज जो समझने का है जीवन के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज दिन तक कई बार हम एक चीज देखते हैं कई लोगों के अंदर, सोचते हैं पढ़ाई नहीं किया तो क्या हुआ, हम सेवा कर रहे हैं ना, इतनी सेवा जो करते हैं, तन मन धन समय श्वास दे करके सब सेवा कर रहे हैं ना, लेकिन वो सेवा भाग्य प्रदान करेगा, पद नहीं। अब फाइनल करना है आपको कि क्या चाहिए, और अगर पद मिल गया लेकिन इतना भाग्य एक्यूमुलेट नहीं है तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने पद पाया उसके साथ भाग्य जरूरी है, तो फिर वो पद क्या हो जाएगा, पीछे होता जाएगा, त्रेता अंत तक वो पद मिलेगा जिस तरह की सेवा की है। तो सतयुग त्रेता का, स्टार्टिंग में त्रेता का भी पद नहीं मिलेगा। इसीलिए भाग्य और पुरुषार्थ, या पढ़ाई और सेवा, दोनों ब्राह्मण जीवन का आधार है। दोनों बाजू है जिसके माध्यम से हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जो हमें अंदर से ऐसा बल प्रदान करेगा कि जो विनाश के समय पर जब चारों ओर से दसों दिशाओं से पेपर आएंगे तो उस पेपर में भी हमें हर रीति से सशक्त करके मजबूत करेगा और हर पेपर को पास करने की हिम्मत देगा। इसीलिए हिम्मत पेपर को पास करने के लिए हलचल में अचल रहने के लिए हिम्मत भी चाहिए और उमंग उत्साह भी चाहिए। तो उमंग उत्साह और हिम्मत ये कहाँ से मिलेगा? निश्चय के फाउंडेशन जितना मजबूत होगा हमारा, निश्चय का फाउंडेशन नहीं तो सारे पेपर आते ही क्या होगा, उड़ा देगा, बाबा का हाथ छुड़ा देगा और कहाँ दिशा में ले जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा जब अंतिम समय जो पेपर आते हैं उस समय कई बार कई लोग इतना बेचैन हो जाते हैं कि ब्राह्मणों में भी ऐसा पेपर आता है, ऐसा होता है, इसे तो दुनिया वाले अच्छे तो दुनिया वाले अच्छे तो दुनिया वालों के तरफ आकर्षित होकर के चले जाएंगे। तो जब दुनिया वालों के तरफ चले जाएंगे तो क्या हो कहेंगे उनको? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत था, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत था। सबसे बड़ी हलचल तो यही हो गई कि दुनिया के तरफ हम वापस आकर्षित होकर के चले गए और बाबा का हाथ और साथ छूट जाता है जहां पर, तो माया सबसे पहले अटैक अगर करती है तो निश्चय के फाउंडेशन पर अटैक करती है। इसलिए निश्चय का फाउंडेशन जितना हमारा मजबूत रहेगा उतनी अचल स्थिति हमारी रहेगी और अचल होने के साथ साथ भी हम उमंग उत्साह और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और ये निश्चय बुद्धि होने कारण हिम्मत में भी बाबा की मदद का सहज तरीके से अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए निश्चय के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं होने देना है, चाहे किसी भी तरीके से बाबा के प्रति हमारा निश्चय इतना पावरफुल रहे। और निश्चय का फाउंडेशन पावरफुल रखने के लिए उसको सींचना पड़ता है। कैसे सींचेंगे, कैसे सींचेंगे? ये निश्चय के फाउंडेशन हमारा कमजोर न हो उसको सींचेंगे कैसे, कैसे सींचेंगे? दृढ़ संकल्प से। और बाबा ने जो हमें ब्राह्मण जीवन के नियम और मर्यादाएं जो बताई हुई है, ये नियम और मर्यादा हमारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करता है। जैसे बाबा ने अन्न की परहेज बताई है, जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर हमारे अन्न की शुद्धि नहीं है तो क्या होगा? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत रहेगा या कमजोर होगा? कमजोर होगा। पवित्रता की धारणा जो बताई है बाबा ने, ये हमारे अंदर दृढ़ संकल्प को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए जो नियम और धारणाएं बाबा ने बताई है, जितना इस नियम और धारणाओं का पालन करते जाते हैं हमारा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होता है। अमृत वेला जो बाबा ने बताया, ये अमृत वेला हमारे निश्चय के फाउंडेशन को बढ़ाएगा या कम करेगा? इसीलिए जितने भी नियम मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, जो कई बार कई लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलता है, तो ये चलता है जो है ये आगे चल करके हमारे निश्चय के फाउंडेशन को भी ऐसा कमजोर कर देगा कि माया का एक झोंका आएगा और कहां का कहां उड़ा के ले जाएगा और बाबा का हाथ और साथ ही छूट गया तो अचल रहेंगे या हलचल का शिकार बनेंगे, क्या करेंगे? और उस समय बाबा भी याद नहीं आएगा। बाबा भी याद तभी आता है जब हमारा ये फाउंडेशन मजबूत हो। तो इसीलिए अचल रहने के लिए निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि होकर के चलना है और निश्चय बुद्धि को सींचने के लिए जो बाबा ने नियम मर्यादाएं श्रीमत हमें दी है उसका पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम हलचल में भी अचल। निश्चय बुद्धि विजयंती, हर युद्ध हमारी विजय में परिवर्तित हो जाएगी, हर संघर्ष विजय का रूप ले लेगा। इसीलिए ये निश्चय बुद्धि के फाउंडेशन को मजबूत करना है, उसको अच्छी तरह से पक्का करना है, और ये पक्का तभी होगा जब हमारा नियम मर्यादाओं के ऊपर पूरा अमृत वेले से रात्रि तक अटेंशन फुल होगा, तब हमारा निश्चय का फाउंडेशन कमजोर नहीं कर पाएंगी। या माया हमें कैसे भी तूफानों में उड़ा नहीं सकेगी, लेकिन हर तूफान हमारे लिए तोहफा का रूप ले लेगा और ही अचल बनाने के लिए हमें आधार बना देगा। तो इसीलिए ये है हलचल में अचल रहने की विधि, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने हमें जो बातें बताई है उन बातों के ऊपर हमारा अच्छी तरह से जितना चिंतन चलेगा और उसका एप्लीकेशन करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।
प्यारे भाई।